ಸತ್ಯಂ ಪುರುಷಂ ಚೈವ ಕ್ಷೇತ್ರಂ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಮೇವ ಚ ಏತದ್ವೇತುಮಿಚ್ಛಾಮಿ ಜ್ಞಾನಂ ಜ್ಞೇಯಂ ಚ ಕೇಶವ. ಅರ್ಜುನ್ ಕಾ ಪ್ರಶ್ನ ಹೇ ಯೇ ಪ್ರಶ್ನ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ನೆ ಸೇ ಪಹಲೆ ಕುಚ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಕೆ ಕುಚ್ ಟೀಕಾಓ ಮೇ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾಪ್ತ ನಹೀ ಕರ್ತಾ ಯೇ ಶ್ಲೋಕ ಮಿಲ್ತಾ ನಹೀ ಹೈ. गीता प्रेस का जो गीता होगा उसके अंदर भी नहीं है, तब उसका गीता नहीं, छोटा सा पहला श्लोक अर्जुन का क्या प्रश्न है इधर? वो जानना चाहते हैं, क्या क्या जानना चाहते हैं, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है. तो अर्जुन के कितने प्रश्न हुए? छह प्रश्न हुए. ये छह प्रश्न मतलब ये छह चीज के, ये छह शब्दों के बारे में जानना चाहते हैं. हाँ, ये छह नाम याद कर लीजिए, क्योंकि भगवान इसका जो उत्तर है लाइन में नहीं देते, थोड़ा सा पहले बाद में ऐसे से करते. ठीक है, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, अभी 13वां अध्याय जो है आखिरी 6 अध्यायों का पहला अध्याय है. आखिरी 6 अध्यायों का सारूप क्या है? लास्ट 6 चैप्टर्स किसके बारे में वर्णन हो? ज्ञान मिश्र भक्ति. ठीक है, ज्ञान मिश्र भक्ति. तो भगवान उसका जवाब देते हुए दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं? श्री भगवान वाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते एतद्वेत्युत्वमित्येतद्यो वेत्तितं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. इदं शरीरं कौन्तेय, इदं शरीरं, ये शरीर क्या है? क्षेत्रम् इति अभिधीयते. इस शरीर को क्षेत्र करके जानो. नो दिस एज द क्षेत्र. एतत् यो वेत्ति, एतत् यो वेत्ति, इस शरीर को जो जानता है उसको क्या बोला जाता है? क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः. दूसरे अध्याय में भगवान ने जो ज्ञान दिया है उसी को 13वें अध्याय में थोड़ा सा और विस्तार से और दार्शनिक भाषा में, टेक्निकल लैंग्वेज में बताते हैं. यही टेक्निकल लैंग्वेज उपनिषदों का, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और ज्ञान, और उच्चारण करना भी थोड़ा सा मुश्किल है इन श्लोकों को. ये उपनिषदिक लैंग्वेज है इसके अंदर. क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत. ऐसे इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इत्यभिधीयते, क्षेत्र है. एतद्यो वेत्ति, इस चीज को जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ बोला जाता है. प्रकृति कौन सा तद विदह विद धातु जो है जानना सीखना जानना तो ये तत्यो वेत्ति मतलब ये तत्यो वेत्ति इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ करके जानो एक शरीर है शरीर क्या है और शरीर को जानने वाला कौन है शरीर को जानने वाला उसे तो ये शरीर का क्या काम है बताइए व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉडी वाई क्या काम है शरीर का कार्य कार्य क्यों करते हैं बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के लिए करता है और यही शरीर के भक्ति कार्य में इस्तेमाल करने से क्या होता है मुक्ति प्राप्त होता है यानी ये शरीर को दो तरीके से जान सकते हैं एक ज्ञान मतलब जानना मैं इस शरीर को एक इंद्र तृप्ति का एक साधन के रूप में जान सकता हूं और इसी शरीर को भगवान की धाम में जाने की मुक्ति का पद के रूप में मुक्ति के लिए साधन भी जान सकता हूं तो प्रभुपाद लिखते हैं कि शरीर मतलब इंद्रियां इंद्रियां मतलब इंद्रिय तृप्ति यानी ये शरीर के अंदर रहते हुए हम इस शरीर को एक इंद्रिय तृप्ति का साधन जैसे सोचेंगे हमारी एक प्रकार की गति होगी और उसको मोक्ष का साधन के रूप में जानने से और एक गति होगी तो क्षेत्रज्ञ कौन हुआ एक है बद्ध जीव वो ये शरीर को किस रूप में जानता है इंद्र तृप्ति का साधन के रूप में जानता है और एक है मुक्त जीव वो इस शरीर को किस रूप में जानता है भगवान की प्राप्ति का साधन के रूप में जानता है ठीक है ज्ञान मतलब ज्ञान होना दो प्रकार का ये शरीर के बारे में ज्ञान है एक ज्ञान क्या है इस शरीर का एक इंद्र तृप्ति के साधन के रूप में जानना दूसरा मुक्ति का साधन के रूप में जानना तो प्रभुपाद जी का परपोट पढ़िए ये चीजें दोनों चीजें उल्लेखित होगा आपको
अर्जुन जगत पुरुष क्षेत्र ज्ञान तथा ज्ञेय के विषय में जानने का इच्छुक था जब उसने इन समस्त के विषय में पूछा तो कृष्ण ने कहा कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्र क्या है ये शरीर बद्ध जीव के लिए कर्म क्षेत्र है बद्ध जीव इस संसार में बंधा हुआ है और वो भौतिक प्रगति पर अपना प्रवृत्त प्राप्त करने का प्रयत्न करता है इस प्रकार प्रगति का प्रवृत्त दिखाने की क्षमता के अनुसार उसे कर्म क्षेत्र प्राप्त होता है ये कर्म क्षेत्र शरीर है और ये शरीर क्या है शरीर इंद्रियों से बना हुआ है बद्ध जीव इंद्रिय तत्व चाहता है और इंद्रिय तत्व को भोगने की क्षमता के अनुसार ही उसे शरीर या कर्म क्षेत्र प्रदान किया जाता है इसीलिए बद्ध जीव के लिए ये शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र कहलाता है अब जो व्यक्ति अपने को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है क्षेत्र तथा क्षेत्र अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन नहीं है। कोई भी व्यक्ति ये सोच सकता है कि बाल्यकाल में से वृद्धावस्था तक उसमें अनेक परिवर्तन होते रहते हैं, फिर भी वो व्यक्ति वही रहता है। इस प्रकार कर्म क्षेत्र की ज्ञाता तथा वास्तविक कर्म क्षेत्र में अंतर है। एक बद्धजीव ये जान सकता है कि वो अपने शरीर से भिन्न है। प्रारंभ में ही बताया गया है कि देहिनो अस्मिन्, जीव शरीर के भीतर है और यह शरीर बालक से किशोर, किशोर से तरुण, तरुण से वृद्ध और वृद्ध के रूप में बदलता जाता है और शरीरधारी जानता है कि शरीर परिवर्तित हो रहा है। स्वामी स्पष्ट क्षेत्र है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सुखी हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं गुप्ता हूं, मैं बिल्ली हूं। ये ज्ञाता की शारीरिक उपाधियां हैं, लेकिन ज्ञाता शरीर से भिन्न होता है। भले ही हम तरह तरह की वस्तुएं प्रयोग में लाएं, जैसे कपड़े इत्यादि, लेकिन हम जानते हैं कि हम उन वस्तुओं से भिन्न हैं। इसी प्रकार थोड़ा विचार करने पर हम ये भी जानते हैं कि हम शरीर से भिन्न हैं। मैं, तुम या अन्य कोई जिसने शरीर धारण कर रखा है क्षेत्र कहलाता है, अर्थात वो कर्म क्षेत्र का ज्ञाता है और ये शरीर क्षेत्र है, साक्षात कर्म क्षेत्र है।
बस तो क्षेत्रज्ञ एक क्षेत्र को या शरीर को दो तरीके से जान सकते हैं। एक है इंद्रियतृप्ति का साधन के रूप में, दूसरा है मोक्ष की प्राप्ति के साधन के रूप में। तो इसमें एक थोड़ा सा, एक छोटा सा पॉइंट ले लीजिएगा। श्री विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि दोनों अवस्थाओं में, भले ही वो बद्ध अवस्था में है या मुक्त अवस्था में, या किसी के रूप में भी जाने शरीर को, मोक्ष की साधन के रूप में है या इंद्रियतृप्ति के साधन के रूप में, दोनों अवस्थाओं में जीव को क्षेत्रज्ञ कहा जा सकता है। लेकिन श्री बलदेव विद्याभूषण के अनुसार इंद्रतृप्ति तभी व्यक्ति करता है जब वो सोचता है कि मैं शरीर हूं, यानी क्षेत्रज्ञ तत्व उसके अंदर नहीं है। क्षेत्रज्ञत्व तत्व नहीं है, क्षेत्रज्ञत्व, क्योंकि वो सोच रहा है कि मैं ही शरीर हूं। ज्ञान मतलब जानना कि ये मेरा शरीर है। वही व्यक्ति कर सकता है। कौन करता है? इंद्रिय तृप्ति। अपने आप को शरीर माने, अपने आप को जो शरीर मान रहा है उस बात को, उसको ये मालूम है कि ये मेरा शरीर है। विश्वनाथ चक्र ठाकुर कहते हैं कि दोनों अवस्थाओं में, यानी चाहे वो क्षेत्र को शरीर माने, नहीं, क्षेत्र को इंद्रिय तृप्ति का साधन माने या क्षेत्र को मुक्ति का साधन माने, दोनों अवस्थाओं में
जीव को क्षेत्र कहा जा सकता है।
जीव को क्षेत्र कहा जा सकता है दोनों अवस्थाओं में। लेकिन श्रील बलदेव विद्याभूषण एक छोटा सा पॉइंट उल्लेखन करते हैं। क्या करते हैं? जब इंद्रिय तृप्ति जो व्यक्ति कर रहा है वो क्या सोच रहा है? मैं शरीर हूं। तो ये ज्ञान का सवाल ही नहीं होता। मैं शरीर से भिन्न हूं, मैं ये शरीर के अंदर निवास करने वाला हूं, ये शरीर से पृथक है मेरा अस्तित्व, ये बात उसको नहीं मालूम होने की वजह से क्षेत्रज्ञत्व उस बद्ध जीव के लिए नहीं है।
तो बल्ले विद्याभूषण के अनुसार ये चीज है, क्षेत्र को बद्ध जीव के लिए नहीं।
बलदेव के क्षेत्रज्ञत्व मतलब वो जो डेसिग्नेशन है क्षेत्रज्ञ, मैं कौन हूं? मैं क्षेत्रज्ञ हूं क्योंकि मैं क्षेत्र को जानता हूं, इसलिए मुझे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। अगर मैं सोचने लगा मैं ही क्षेत्र हूं तो क्षेत्रज्ञत्व मतलब वो जो डेसिग्नेशन है कि आई एम द नोयर, मान लो कि कोई घर में ये मेरा घर है, अगर वो सोचने लग जाए कि मैं ही घर हूं, मैं ही गाड़ी हूं, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो वो खुद अपना अस्तित्व भूल गया है, घर की स्थिति सब भूल गया है। तो प्रभुपाद जी इसको हल्का सा एक लाइन में इंडिकेट करते हैं, देयरफॉर द बॉडी इज कॉल्ड क्षेत्र और द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज फॉर द कंडीशन सोल। नाउ द पर्सन हु शुड नॉट आइडेंटिफाई हिमसेल्फ विद द बॉडी इज कॉल्ड क्षेत्रज्ञ, द नोअर ऑफ द फील्ड। हिंदी में लाइन देखिए, वो पहले पैराग्राफ में ही देखिए, क्वेश्चन मार्क है ना एक जगह, द फील्ड ऑफ एक्टिविटी इज द बॉडी, व्हाट एंड व्हाट इज दिस बॉडी, शरीर क्या है, उसके बाद पढ़िए,
शरीर इंद्रियों से सबसे बना हुआ है,
हाँ,
बुद्धि जो इंद्र तृप्ति चाहता है, और इंद्रिय तृप्ति को भोगने की क्षमता के अनुसार उसी शरीर का कर्म और क्षेत्र प्रदान किया जाता है।
हाँ बाद में, देयर फॉर इसीलिए
के लिए शरीर क्षेत्र अथवा कर्म क्षेत्र प्रदान है।
हाँ हाँ उसके बाद नाउ नाउ
अब जो व्यक्ति आपको शरीर मानता है वो क्षेत्र की कहलाता है, क्षेत्र तथा क्षेत्र के अथवा शरीर और शरीर की ज्ञाता देही का अंतर समझ पाना कठिन है।
यही तो प्रॉब्लम है। आप इंग्लिश वाला पढ़िए, हिंदी वाला पढ़िए, बीच में क्वेश्चन मार के ना, उसके बाद तीसरे चौथा लाइन में, इसीलिए उसके बाद पढ़िए।
इंग्लिश में पढ़ो,
अभी पहले इंग्लिश में पढ़ो आप।
देयरफॉर द बॉडी इज कॉल्ड
क्षेत्र
क्षेत्र और द फील्ड ऑफ एक्टिविटी फॉर द कंडीशन सोल। नाउ द पर्सन हु शुड नॉट आइडेंटिटी हिमसेल्फ विद द बॉडी इज द कॉल्ड क्षेत्रज्ञ।
हाँ उधर क्या लिखा है, ए पर्सन Who should not identify himself with the body is called क्षेत्रज्ञ। हिंदी में क्या लिखा है,
जो मानता है इसलिए बदजीव के लिए शरीर क्षेत्र कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है।
देखिए
क्षेत्र तथा क्षेत्र के साथ शरीर और शरीर की
ज्ञाता नहीं, आप देखो आप हिंदी जानते हो दोनों, इंग्लिश भी जानते हो आप,
इंग्लिश वाला हिंदी में लिख देते
हो, हम आप देख ले सकते हैं, एक कंफ्यूजन ही। देखिए प्रभु जी आप थोड़ा इंग्लिश वाला देखिए, तो आप ऊपर पैराग्राफ देखो, प्रभुपाद जी का हिंदी में अनुवाद जरा देखें, बताया ना वैसे प्रभु जी मैं बता रहा हूं, हिंदी में कम से कम 200-300 से ज्यादा है, ऐसा बहुत सारा, सो मेनी लाइक दैट। हाँ हो सकता है उसे पढ़ना अच्छा, एनी हो अभी जो हिंदी करेक्शन हो रहा है ये तो ठीक है, भागवतम में तो बाप रे बाप पूरा अनुवाद में चेतन चेतन में तो बंद ही कर दिया छाप में।
शरीर
माता लिखा है,
हाँ भैया ठीक है, अयो वो ना करेक्ट कर लीजिए, जस्ट मेक ए करेक्शन देयर। हाँ तो श्रील प्रभुपाद जी इधर बलदेव विद्याभूषण के अनुसार इस बात को लिखते हैं, शरीर क्षेत्र है कि नहीं, लेकिन अगर मान लो कोई व्यक्ति मैं ही शरीर हूं करके बैठ गया, समझ के बैठ गया, क्या उसको क्षेत्र को कहा जा सकता है? नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उसको मैं शरीर से पृथक हूं, अलग हूं करके ज्ञान नहीं है।
तो शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है।
ठीक है, पहला हाँ अच्छा प्रश्न है, विश्वनाथ ठाकुर ऐसा क्यों बोलते हैं, वाइट इज सो, ये देखिए ये जो देहात्म बुद्धि है, ये कर्मकांडी व्यक्ति जो है वो सोचता है कि मैं भोगूंगा, लेकिन कहां भोगूंगा, स्वर्ग में जाके भोगूंगा, उसका भी भोगने का इच्छा नहीं है, यानी उसको ये शरीर मरने के बाद और एक शरीर है करके उसको ज्ञान है, तो वो जानता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, लेकिन उसका प्रॉब्लम क्या है, वो सोचता है कि मुझे वैसे ही अच्छा स्वर्ग में शरीर मिलेगा तो वो शरीर में भोगूंगा, गेटिंग पॉइंट। तो वैसे जो ऑडियंस है, यानी जो सूक्ष्म इंद्र तृप्ति चाहते हैं कर्मकांड की विधि के द्वारा, तो उनको नजर में रखते हुए वैसा लिखे होंगे, इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है,
मतलब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जब लिखा हुआ तो उनके दिमाग में
ये
विचार होगा। हाँ,
ये शरीर जो है इंद्रिय भोग का है, लेकिन ये शरीर जो है इसके द्वारा मैं यज्ञ वगैरह वगैरह हवन करूंगा, क्या प्राप्त करूंगा, स्वर्ग में जाके मैं नया और एक शरीर प्राप्त करूंगा, यानी उनको भी ज्ञान है कि नहीं, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, लेकिन उसका मूर्खता क्या है, मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, उनका ज्ञान है लेकिन उनका क्या है मूर्खता, कि इससे अच्छा शरीर प्राप्त करूंगा तो मैं भोगूंगा, दैट इज इट फिर भी वो क्या सोच रहा है, जब मान लो कि मैं कोई हवन कर रहा हूं, मैं उधर जाके मैं इंद्रलोक में जाके स्वर्ग में जाके भोगूंगा, उसको क्या ज्ञान है, वो जानता है कि नहीं, ये शरीर छोड़ूंगा दूसरा शरीर प्राप्त करूंगा, अच्छा शरीर प्राप्त करूंगा, अच्छा शरीर में अच्छा भोगूंगा, ठीक है।
तो उनके हिसाब से तो ये लाइफ ठीक लग रहा है,
कौन जो देखे ठीक है समझ लेना, देखिए अल्टीमेटली क्या लिखा है अलग बात है, लेकिन आवर अंडरस्टैंडिंग शुड बी वेरी क्लियर क्षेत्र में, ठीक है। जब ये नेक्स्ट वर्स थर्ड वर्स ठीक है, फर्स्ट सेकेंड वर्स क्लियर हो गया है, क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्यत् सर्वक्षेत्रेषु भारत, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर् ज्ञानम् एतज्ज्ञानम् मतम् मम। इस श्लोक के ऊपर प्रभुपाद जी के लेक्चर में कहते हैं, वन चा इज एनफ टू डिफीट ऑल द मायावादीज, मायावादियों का सिद्धांत को खंडन करने के लिए एक चा काफी है, चा इधर ये शब्द इस श्लोक में है ना, चा चा शब्द है ना, चा मतलब एंड, क्षेत्रज्ञम चा अपि माम विद्धित सर्व क्षेत्रेषु भारत। तो भगवान इधर क्या कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन चा मतलब औरेक, औरेक क्षेत्रज्ञ है, औरेक क्षेत्रज्ञ। पहले श्लोक में, दूसरे श्लोक में उन्होंने कहा कि जीव क्षेत्रज्ञ, दूसरे तीसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, माम विद्युत, मैं भी क्षेत्रज्ञ हूं, मैं भी औरेक क्षेत्रज्ञ हूं, और मेरा क्षेत्रज्ञत्व का विशेषता क्या है, सर्व क्षेत्रेषु भारत, मैं सारे क्षेत्रों में निवास करता हूं, सारे शरीरों में निवास करता हूं। भगवान श्री कृष्ण वो ऐसा क्षेत्रज्ञ है, एक होने पर भी हरेक क्षेत्र में निवास करते हैं। इसलिए उनको प्रधान क्षेत्रज्ञ करके उपनिषदों में कहा गया है। कृष्णा इस दोनों प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश, क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्युत सर्व क्षेत्रेषु भारत, सारे क्षेत्रों में निवास करने वाला क्षेत्रज्ञ हूं मैं। और सेकंड लाइन में क्या कहते हैं, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्तज्ञानम मतम मम, क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम। इसका मतलब क्या है, क्षेत्र और दो प्रकार के क्षेत्रज्ञों के बीच में, यानी तीन क्या है वो, क्षेत्र, दूसरा क्षेत्रज्ञ, प्रधान क्षेत्रज्ञ, इन तीनों के बीच में अंतर को जानना क्या बोला जाता है, इन तीनों के बीच में अंतर को जानना क्या बोला जाता है, ज्ञान बोला जाता है। इस चीज के ऊपर आधारित होके श्रीपाद मध्वाचार्य अपना द्वैत सिद्धांत को स्थापना करते हैं। थोड़ा ये तो थोड़ा भक्ति वाइबल लेवल का है, लेकिन आप नोट कर सकते हो, श्रीपाद मध्वाचार्य का जो सिद्धांत का आधार ये है, पंचभेद, पंचभेद, जीव परमात्मा में भेद, जीव और जड़ वस्तु में भेद, जीव जीव भेद,
जीव परमात्मा,
हाँ, और जड़ वस्तु परमात्मा में भेद, और जड़ वस्तु में भेद, इसको पांच पंच भेद कहा जाता है। पांच में मत कहो, जीव परमात्मा भेद, जीव जड़ पदार्थ में भेद, जीव जीव में भेद। आपके लिए क्वेश्चन है, जीव जीव भेद, इसका उल्लेखन दूसरे अध्याय के कौन से श्लोक में करते हैं, वेरी गुड, न त्वे वाम ज्ञातु न सम्ने में जनाधिपा न चैव न भविष्या सवे वयमतपराम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है वो,
एक हो गया जीव परमात्मा, एक हो गया जीव जड़ में, फिर जड़ परमात्मा में,
पहला जीव परमात्मा भेद,
हाँ।
जीव जड़ वस्तु भेद,
हाँ।
जीव जीव भेद,
जीव
जड़ वस्तु परमात्मा में भेद
पहला
है रे?
दूसरा
चौथा
पांचवा
कंफ्यूज मत कीजिएगा।
लेकिन पहला बोला आपने जीव एवं परमात्मा में भेद,
हाँ।
फिर दूसरा बोला आपने जीव एवं जड़ में भेद,
हाँ।
तीसरा बोला जीव एवं जीव में भेद,
हाँ।
चौथा बोला जड़ एवं परमात्मा में भेद,
हाँ।
पांचवा बोला
जड़ और जड़,
जड़ और जड़,
जड़
और जड़ और जीव और जीव दोनों तो ये है, बाकी फिर तीनों का अलग
अब मैथमेटिक्स में पढ़े थे ना परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन,
जड़ में भेद पहले थे एक दूसरा नंबर का,
हाँ।
और जड़ और जड़ में भेद,
जड़ और जड़ में भेद पांचवा नंबर,
नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, पांच छह लिख दो ऊपर नीचे, नंबर क्या मतलब और एक भेद आपको इधर नहीं है, परमात्मा परमात्मा तीन है, एक दूसरे के अंदर भेद में कॉम्बिनेशन करेंगे तो कितना होता है, छह होता है, उसमें पांच ही है, वो छठा चीज क्या चीज नहीं है,
हाँ
क्यों दीपार चिरे वै दशाम तरंबुपेत्या दीपाय दिवृत हेतु समान धर्म, श्लोक है ब्रह्म संहिता का, श्लोक सबको मालूम होना चाहिए, सुनो दीपार चिरे वै दशांतरम अभ्युपेत्या दीपाय ते विवृत हेतु समान धर्म दुर्गे हुई च विष्णुतया विभाति गोविंद मादि पुरुषम तमहम पूर्णमदन पूर्णमदन समान धर्म, सारे जितने भी विष्णु तत्व हैं वो सभी दिव्य है, उसके अंदर तत्व के दृष्टिकोण से भेद नहीं है, रस तारतम्य है लेकिन तत्व भेद नहीं है, द्वैत द्वैत सिद्धांत कहेंगे,
हाँ? परमात्मा परमात्मा भेद नहीं
कर सकते, जितने भी भगवान के तत्व है सभी दिव्य है, कृष्ण के एकमेव द्वितीय ब्रह्मा सोनली वन, इसके बताए रस तारतम्य अंतर है लेकिन फिलॉसफी में आपको ये नहीं करना चाहिए, सभी दिव्य है, ऑल आर ट्रांसेंडेंट, ठीक है,
क्या
क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर ज्ञानम यत्त ज्ञानम मतम वा, ज्ञान मतलब क्या है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ प्रधान क्षेत्रज्ञ इन तीनों के बीच में अंतर को जानना इसको ज्ञान कहा जाता है, ये पांच पेज,
ये पांच
तीन तीनों के बीच में है ना, वो आपको सेकेंड चैप्टर में ये क्वेश्चन आया ना, जब एग्जाम लिखे थे ये क्वेश्चन है ना, व्हाट इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, तो क्या लिखे आपने, वही है शरीर आत्मा
परमात्मा,
उसी को तो टेक्निकल लैंग्वेज है, बस भाषा अलग है,
तो फिर ये जो आपने दिया मतलब पांच इसका इससे क्या संबंध है, चार चीजों का इससे क्या संबंध है,
ये वो पंचभेद है, ये तीनों के बीच में ही तो अंतर है ना, ये तीनों का ही कॉम्बिनेशन है ना, ये दैट इज अ थिंग, हाँ तो डायरेक्ट देखिए, कुछ गणित में कभी कभी ऐसा होता है, आप बचपन में या थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में स्ट्रेट लाइन क्या है सुने होंगे, स्ट्रेट लेकिन जब आप डिग्री में जाते हो, स्ट्रेट लाइन इज अ सर्कल विथ इनफाइनाइट रेडियस, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन की परिभाषा किया जाता है, वो एक ऐसा सर्कल, सर्कल को क्या बोलेंगे, गोल है जिसका रेडियस को क्या बोलेंगे, हाँ समझ रहे हैं, रेडियस विथ इनफाइनाइट रेडियस, हाँ वो स्ट्रेट लाइन, वही एक ही चीज है लेकिन उसको बोलने का तरीका अलग होता है बस, तो वैसे ही ये जो भाषा है उपनिषदिक भाषा है, जिससे क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान है, तो दूसरी जगह जो भी कहा गया है उसी को तो टेक्निकली बताया गया है बस, दैट इज ओनली डिफरेंस, वो तात्पर्य बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का, नक्ते वा हम जात न सम। उसके ऊपर वैष्णव आचार्य का टीका जो है बहुत इतना एलॉबरेट एक्सप्लेनेशन है कि किस प्रकार नत्वे वाहम जात न समने में जनादिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम तत्पराम। इसमें बहुत सुंदर आर्ग्यूमेंट है प्रभुपाद जी का और वैष्णवाचार्यों का भी। उसमें क्लियरली उल्लेखन करते हैं भगवान, हे अर्जुन तुम, मैं और जितने भी अहम त्वाम सर्वे, मैं तुम और बाकी सब जितने भी है, अगर इन तीनों में कोई अंतर ना होता, सभी एक है, तो मैं तुम सभी ऐसा बोलने की जरूरत नहीं था भगवान को। अगर कोई व्यक्ति कहता है कि नहीं नहीं भगवान ने केवल अभी के लिए कहा है, भगवान क्या कहते हैं, न चैव न भविष्य, तब व्यक्ति बोल सकता है नहीं 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 ये खाली मुक्ति के हद तक ही है, ओनली टिल द पॉइंट ऑफ लिबरेशन, यानी ये शरीर के स्तर में भगवान कहते हैं। तो प्रभुपाद जी आर्ग्यूमेंट करते, पिछले श्लोक में शरीर की शारीरिक चीज का निंदा किया, खंडन किया, तो तुरंत शारीरिक स्तर में कैसे बोल सकते हैं। नहीं नहीं भगवान जो बोल रहे अभी जो ये चीज है ये भौतिक है, अगर भौतिक है तो भगवद्गीता भगवान की वाणी को पूर्ण निस्वार नहीं रहे तो भगवद्गीता पढ़ते क्यों हो। ये थ्री आर्ग्यूमेंट्स थे इन द पर्पोर्ट, बहुत महत्वपूर्ण पर्पोर्ट है, इसको एनालाइज करना चाहिए। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स है, वेरी मतलब वो पर्पोर्ट पढ़ने लायक पर्पोर्ट है, एस्टैब्लिश द वेदांत परफेक्ट वेदांत, ठीक है। क्षेत्र क्षेत्र ज्ञान ज्ञान, ये श्लोक की तात्पर्य में एक बहुत महत्वपूर्ण श्लोक कोट करते हैं श्वेताश्वर उपनिषद से, जिसके अंदर तीन प्रकार के ब्रह्म का वर्णन हुआ है। ये बहुत पावरफुल श्लोक है जिसके अंदर स्पष्ट रूप में कहा गया तीन प्रकार का ब्रह्म है, वो याद करेंगे तो भी अच्छा, आपको मायावादी या कोई और सामने आते हैं उनके लिए बहुत पावरफुल श्लोक है। भोक्ता भोग्यम प्रणीतारं च मत्वा सर्वं प्रोतं त्रिविधं ब्रह्मनेतत्, सर्वं प्रोतं त्रिविधं ब्रह्मनेतत्। एक है भोक्ता, कौन है वो, जीव। भोग्यम क्या है वो, शरीर। और सर्वम प्रेरितारम कौन है वो, प्रेरणा प्रदान करने वाले जो भी है परमात्मा भगवान, तो इनको क्या बोला जाता है, त्रिविधम ब्रह्म, तीन प्रकार के, जीव जड़ वस्तु और परमात्मा, तीन, जीव ब्रह्मन जड़ ब्रह्मन परब्रह्मन। हाँ तीन प्रकार, जीव ब्रह्मन जड़ ब्रह्मन पर। आठवें अध्याय में भी जीव को ब्रह्म बोला गया है, क्यों बोला गया, ब्रह्म का धातु शब्द क्या है, बृहत, बृहत से ब्रह्म, तो बृहत मतलब क्या है, महान बड़ा, और जीव को महान करके क्यों बताया गया है, क्योंकि शाश्वत है ना जीव, इसलिए दैट इज द रीजन जीव को एक ब्रह्म कहा गया। अहम ब्रह्म अस्मि, उसका वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है, वैष्णव डेफिनेशन, हाँ क्या है, हाँ मैं किसका हूं, मैं ब्रह्म का हूं, भगवान का हूं, दैट इज अंडरस्टैंडिंग। अहम ब्रह्मास्मि का सर्वम कलिदम ब्रह्मन का सब कुछ ब्रह्म है, उसका क्या बोले, उसका वैष्णव अंडरस्टैंडिंग क्या है? सब कुछ भगवान की शक्ति है, इट इज द एनर्जी ऑफ कृष्ण। तत्वमसी का मैं ब्रह्म का हूं, हाँ। तो ये खास करके बहुत इस्तेमाल करते हैं माया वाले, तत्त्वम असि, हाँ 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 सेम। सर्वम कलुइदम ब्रह्मन्, कलुइदम ब्रह्मन्, सर्वम कलुइदम ब्रह्मन् का सब कुछ भगवान की शक्ति है, जो दिखाई पड़ रहा है आपको सर्वम।
मायावादी क्या कहते हैं सर? ये तो सब कुछ भगवान की शक्ति है,
ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। ठीक है, ऑलमोस्ट हो प्रभुपाद जी ये तीनों को कंपेयर करते हैं, पेंटर पेंटिंग एंड ईसल। उनका भाष्य, इट इज देयर भाष्य, इट इज नॉट उपनिषद स्टेटमेंट, उपनिषद स्टेटमेंट नहीं है, बाकी सब उपनिषद का स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट चौथा वर्स, फोर्थ वर्स, तत्क्षेत्रम यच्चयाद्रक, यद्विकारी यतश्च यत् सचयो यत् प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। हे अर्जुन, समासेन संक्षिप्त में, संक्षिप्त में सुनो, क्या सुनो, किसके बारे में? तत्क्षेत्रम, क्षेत्र के बारे में सुनो, और चायत, ये क्षेत्र किन चीजों से बना है उसके बारे में सुनो, वो चीजों के अंतर्गत जब मिश्रण होता है क्या विकार आते हैं उसके बारे में सुनो, विकारी एक कहां से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में सुनो, क्षेत्रज्ञ कौन है उसके बारे में सुनो, और उनके ऊपर क्या प्रभाव, क्षेत्रज्ञ के ऊपर क्या प्रभाव होगा उनके बारे में सुनो। कितने प्रश्न हुए, कितने चीज हुए? क्षेत्र क्या है, वो किन चीजों से बना हुआ है, और इनके अंदर विकार क्या है, और कब उत्पन्न, कहां से उत्पन्न हुआ है, क्षेत्रज्ञ कौन है, एंड क्षेत्रज्ञ के ऊपर क्या उसका प्रभाव। क्षेत्र तो आप जरा इस श्लोक को पढ़िए और उसके अंदर एक एक शब्द का अनुवाद भी पढ़िए।
इसी श्लोक
हाँ अपने आप पढ़ लीजिए और ये छह चीजों के साथ कोरिलेट कीजिए। ये श्लोक में कौन से शब्द ये छह चीजों के साथ रिलेट होता है, अब जब थोड़ा सा आपको आइडिया आएगा, नहीं तो इन्फॉर्मेशन जैसा रहेगा। अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग। मेरा एक छोटा सा सलाह है, जब भी आप कोई भी श्लोक पढ़ते हो आगे भागवतम को भगवद्गीता की भी हो, श्लोक पढ़ने के बाद शब्दार्थ निश्चित रूप में पढ़िए, कभी भी शब्दार्थ पढ़े बिना आगे मत जाओ। नेवर रीड ए वर्स विदाउट रीडिंग द वर्ड टू वर्ड मीनिंग। उसमें आपको संधि विच्छेदन मालूम हो जाएगा और बाद में आपको आइडिया रहेगा ये शब्द इस चीज के लिए। ठीक है,
क्लास के सामने छद्दार पढ़ने में छह तीन छह पॉइंट दिलाई नहीं देता अपनी, जो शब्दों का
पहले है कि जो भगवद्गीता के पहले के जो श्लोक्स है वो इस प्रकार नहीं थे। ये 13वां अध्याय जो है ना, अधिकांश श्लोक उससे एक्चुअली ऑलमोस्ट प्रत्येक श्लोक कोई ना कोई उपनिषद में कोट किया हुआ है। उपनिषद की भाषा जो है वैदिक भाषा है और जो पुराण और इतिहास की भाषा जो है पौराणिक भाषा है। जैसे पहले के श्लोकों में दूसरे अध्याय में जैसे भगवान कहते हैं कि जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी समझ सकता है कुछ लैंग्वेज 13 चैप्टर का वो। इसके लिए संस्कृत के पंडित के पास जाना पड़ेगा आपको। आप देख लीजिए, आप अनुवाद पढ़िए, अनुवाद में छह चीज है कि नहीं देख लीजिए।
अब तुम मुझसे ये सब संक्षेप में सुनो, कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, दूसरा गया इसमें क्या परिवर्तन है, कहां से उत्पन्न हुआ है, कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। एक दो तीन
चार है ना, तो इसमें बताता हूं। पहला तो है तत्क्षेत्रम, दूसरा है च एत, च मतलब इसके साथ एक क्षेत्र, यत किन चीजों से बना हुआ है,
यच का मतलब
यच नहीं है, यत है
यत जो,
तीसरा विकारी यत, कहां से जहां से आया कहां से आया है, सह कौन है वो यत सह, लास्ट में प्रभाव यत प्रभाव। ठीक है, सब क्वेश्चन।
दूसरा मुझे याद रखिए वो लिखा वो है याद रखिए,
तीसरा पॉइंट जो लिखा वही है
हाँ।
याद
हाँ यात्रिक बंद एज इट इज, इसके प्रभुपद लिखते हैं कि यथा उसके अंदर क्या क्या है तत्व, जो भी है इतना डीप में ये जाने के, कम से कम इतना मालूम होना चाहिए प्रश्न है, तो उसका तात्पर्य पड़ी जस्ट डीप।
भगवान कर्म क्षेत्र, क्षेत्र तथा कर्म क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र की स्वाभाविक स्थितियों का वर्णन कर रहे हैं। मनुष्य को यह जानना होता है कि यह शरीर किस प्रकार बना हुआ है, ये शरीर किन पदार्थों से बना हुआ है, ये किसके नियंत्रण में कार्यशील है, इसके इसमें किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं, ये कारण कौन से हैं, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है तथा आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। मनुष्य को आत्मा तथा परमात्मा उनके विभिन्न स्वभावों उनकी शक्तियों आदि के अंतर को भी जानना चाहिए। यदि वो भगवान द्वारा दिए गए वर्णन के आधार पर भगवद्गीता समझ दे तो ये सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन उसे ध्यान रखना होगा कि प्रत्येक शरीर में वास करने वाला परमात्मा के को जीव का स्वरूप न मानकर, प्रत्येक शरीर में वास करने वाले परमात्मा को जीव का स्वरूप न मानकर, ऐसा तो सक्षम पुरुष तथा अक्षम पुरुष को एक समान बताने जैसा है।
ये क्वेश्चन से बाद में आएगा, जो उसका जवाब देगे तो प्रभु जवाब आएगा तब आएगा, ठीक है। व्हेन द आंसर आएंगे तो अभी जो आगे जो भी बताएंगे उसी का जवाब है। तब अर्जुन के मन में एक प्रश्न उठा, कैसे ये श्लोक उच्चारण किया था, वो भगवान ये सब के बारे में बताने वाले हो, ये आप कहां से बताने वाले हो, इसका कोई प्रमाण है? तभी ये पांचवा श्लोक में भगवान कहते हैं कि मैं जो बताने वाला हूं उसके पीछे एक बड़ा प्रमाण है। क्या हो बता, ऋषिभिर् बहुधा आगीतम छंदोभिर् विविधै पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विनिश्चितैः मतलब क्या है? निश्चित रूप में कहा गया है। ये बात कहां कहा गया है? वेरी गुड, ब्रह्म सूत्र पदेश, ब्रह्म सूत्र में कहा गया है। ये ब्रह्म सूत्र के बहुत सारे नाम है, वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र, द्वैपायन सूत्र, व्यास सूत्र, वेदांत, उत्तर मीमांस सूत्रस, इसके बहुत सारे नाम हैं।
तो अर्जुन ने ऐसा प्रश्न भगवान से किया, अभी तक तो सारी गीता सुनते चुपचाप सुनते चले आ रहे, तब तो ये पूछा नहीं कहां से बता रहे, अभी यहां पे ये प्रश्न क्यों किया?
मेरा यही यही प्रश्न है, नौ चैप्टर पढ़ा अभी तक तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा, अभी क्यों आ रहा है?
अभी तक तो सब सुनते गए चुपचाप।
वो बात भी है, इसके ऊपर कोई आचार नहीं किया, नहीं कोई मैं देखा नहीं, मैं भी मेरे भी क्वेश्चन था, अब कुछ है मेरा भी बहुत जगह प्रश्न रहा कि जैसे आठवें अध्याय में अर्जुन प्रश्न पूछते हैं ना, उसका आधार है, फिर सातवें श्लोक में सातवें अध्याय में उन्होंने कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे उनको समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर, लेकिन ये तेरहवें अध्याय में उन्होंने जो प्रश्न पूछा है अर्जुन ने, ये इसका पहले का करेक्शन मैंने रामानुज कमेंट्री, मध्व कमेंट्री, विश्वनाथ ठाकुर और बलदेव देवभूषण सबके कमेंट्री छान मारे, लेकिन ये बात किसी ने नहीं कहा। नहीं, ये प्रश्न जो है ना, पहला क्वेश्चन है 13 चैप्टर का, ये जो प्रकृतिम पुरुषम चैव क्षेत्रम क्षेत्रज्ञेव च, ऐसा बताइए, मुझे नहीं मालूम। सीधे स्वामी कॉमेंट्री मेरे पास नहीं है।
सुधर स्वामी कॉमेंट्री है, ऐसा है।
मेरे पास सीधे स्वामी का इंग्लिश में नहीं है, बाकी सब का इंग्लिश में। क्या लिखते हैं सीधे स्वामी? प्रभुपाद भी नहीं लिखते इसका पहला श्लोक में। अर्जुन के मन में क्यों आया ऐसा प्रश्न? और ये पूरा 13 चैप्टर का जो भाषा है ना, वो भी पौराणिक भाषा नहीं है। वो शैली भी वो पहले जैसा शैली जैसे मिलता जुलता भी नहीं है। ये बात को जानना चाहिए, अर्जुन को उपनिषद मालूम थे। इसलिए आत्मज्ञान सुनाइए। हो
सकता
है, शब्द नहीं हुआ, लेकिन अल्टीमेटली तत्व ज्ञान ना है। अल्टीमेटली तत्व ज्ञान, अल्टीमेटली जीव का अपने प्रकृति का जो तत्व ज्ञान है, तो जो है वो बराबर है इसका। शिव स्वामी कनेक्शन है, मैं मेरा बहुत बहुत बार ये मन में आया, लेकिन कोई और कमेंटेटर ने नहीं किया। दूध देना तो है, दैट इज द फर्स्ट पॉइंट।
ये आदर्श यहाँ प्रतिष्ठा की कि ऐसा ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, ये कहे करके हम लोग भगवान ने ब्रह्म सूत्र की महत्ता को प्रतिपादित
किया। क्या है प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में से शुरुआती
ये अर्जुन के मन में एक्चुअली प्रश्न
ये विश्वास ठाकुर लिखते हैं, क्योंकि डिफरेंट आचार्य जैसा जो है ना आता है, लेकिन उधर रसाचार्य ठीक है, वो तो बहुत जगह विश्वास ठाकुर ऐसा है कि अर्जुन के और कृष्ण के बीच में बीच वाले जो कन्वर्सेशन है ना वो भी लिखते हैं।
अर्जुन ने पांचवें क्वेश्चन पूछे, लेकिन
उसी कनेक्टेड है सब, इज ऑल कनेक्टेड विद दैट। ठीक है, ऋषिवीर बहुधा गीतम छंदो। अच्छा, हम लोग ब्रह्मसूत्र चर्चा कर रहे थे। आप सबको मालूम है ब्रह्मसूत्र क्या है? कभी कभी कुछ आइडिया है व्हाट इज ब्रह्मसूत्र? आइडिया नहीं। हाँ हाँ, इधर थोड़ा सा ये जो सारा वैदिक जो ग्रंथ है उसका थोड़ा सा परिचय देता हूँ। पूरा विस्तृत रूप में देना चाहता था लेकिन टाइम है अपने पास। वेदों में तीन प्रस्थान है, त्री प्रस्थान, इसलिए वेदों को प्रस्थान त्रय भी कहा जाता है। प्रस्थान त्रय, एक है श्रुति प्रस्थान, दूसरा है स्मृति प्रस्थान। हाँ, प्रस्थान, प्रस्थान मतलब जहां से सारा ज्ञान उद्गम होता है। प्रस्थान न्याय प्रस्थान श्रुति प्रस्थान स्मृति प्रस्थान न्याय प्रस्थान न्याय ओरिजिनल जो चार वेद है ओरिजिनल फोर वेदस वो स्मृति प्रस्थान के अंतर्गत आता है श्रुति प्रस्थान ओरिजिनल चारों वेद जिसके अंदर ब्राह्मण अरण्य का उपनिषद संहिता आते हैं वेदों के चार सेक्शन है ओरिजिनल वेद का वो चार वेद नहीं है चार सेक्शन है
चार वेद
ये चारों वेदों में ये चार सेक्शंस है क्या है ब्राह्मण अरण्यक संहिता उपनिषद जैसे बृहदारण्यक उपनिषद है बृहदारण्यक संहिता बृहदारण्यक ब्राह्मण बृहदारण्यक ब्राह्मण अरण्यक संहिता और उपनिषद वो अलग है वो संहिता अलग है जिसको बोलते हैं वैदिक संहिता यजुर्वेद संहिता ऐसा ये जो ब्रह्म संहिता वो सब अलग है दे आर डिफरेंट ठीक है स्मृति प्रस्थान में पुराण इतिहास वेदांग पंचरात्र पुराण इतिहास
स्मृति
पुराण इतिहास पंचरात्र वेदांग स्मृति श्रुति मतलब सुना गया स्मृति मतलब स्मरण किया गया ठीक है ठीक है
पुराण इतिहास पंचरात्र
वेदांग ठीक है न्याय प्रस्थान में स्मृति में पुराण इतिहास वेदांग पंचरात्र वेदों का अंग ठीक है न्याय प्रस्थान में षड दर्शन और भाष्य संक्षिप्त में पूरा वो एक प्रिलिमिनरी नॉलेज है इतना है काफी है न्याय मतलब लॉजिक तर्क ये षड दर्शन में एकदम टाइप हाईएस्ट वाला क्या है टॉप मोस्ट क्या है वेदांत सूत्र है न्याय विशेषिक सांख्य पूर्व मीमांसा सूत्र में मांस
ये
हाँ वो न्याय हालांकि मतलब नाम हो है तो उतना डीप में मजे कंफ्यूज स्टेप बाय स्टेप। ठीक है इतना हो गया क्लियर है। चारों वेद जो है ओरिजिनल वेद उसका स्वर और क्रम हर सृष्टि में एक ही रहेगा। जैसे ईशोपनिषद है ठीक है आप देखे होंगे उसके अंदर श्लोका वन श्लोका टू नहीं है। क्या लिखा है ईशोपनिषद बुक है प्लस क्या लिखा है अब भगवद गीता में क्या लिखा है क्यों वाई
ये
वो जो है प्रत्येक कल्प में जब भी वेदों का भगवान प्राकट्य करते हैं जैसा का वैसा ही रहेंगे लेकिन ये जो स्मृति शास्त्र है ये इस प्रकार है। ऋषि लोग या महान संत लोग क्या करते हैं श्रुतियों को श्रवण करते हैं अपने स्मृति में रख के अपने स्मरण में रख के जब जिस समय जिस प्रकार की आवश्यकता है उधर प्रवचन देते हैं वह स्मृति हो जाता है।
लेकिन है तो
श्रुतिस आर व्हाट टू डू एंड स्मृतिस आर हाउ टू डू। स्मृति में क्या श्रुतियों में क्या है क्या करना है। एग्जाम्पल अंतकाले च मामेव स्मरण मरने के टाइम भगवान का स्मरण करो ये करना है ये स्मृति का श्रुति का आदेश है। लेकिन कैसे करें तब एक ऋषि सबको बुला के एक कथा सुनाए वो कथा में कोई और कथा सुनाए उसमें और एक कथा सुनाए कथा सुनाते सुनाते एक व्यक्ति एक महान व्यक्ति थे जिनका नाम था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह ने ऐसा किया वैसा किया ऐसा किया अंत में भाणों की शैया के ऊपर लेटे थे भदेम भगवान आए उनका दर्शन करते हुए अपना जीवन त्याग किया। अगर मरना ही है तो ऐसा मरो सर। तो वन इज व्हाट टू डू कैसे करना क्या करना है दूसरा क्या है इंस्ट्रक्शन हाउ टू डू व्हाई टू डू। तीन ही प्रश्न है व्हाट हाउ एंड व्हाई क्या कैसे क्यों न्याय क्या है क्यों यानी जो भी प्रश्न पूछा उसका जवाब न्याय में रहता है। तो ये वेदांत सूत्र उधर है। तो व्यासदेव सारे वेदों को रचना करके सारे वेदों में उपनिषदों को भी रचना किए रचना करने के बाद उपनिषदों का सार रूप में उन्होंने वेदांत सूत्र में प्रस्तुत किया।
हाँ
श्लोक उसका चेंज होता है जैसे मान लीजिए अभी का जो भागवतम है जरूरी नहीं कि अगले कल्प में जब भागवतम आएगा वो भागवतम का यही श्लोकों का प्रमाण रहेगा वैसे ही शब्द रहेंगे नहीं हो सकता है ज्ञान तो वही रहेगा लेकिन उसका डिफरेंस रहता है। न्याय जो है वो भाष्य आचार्य लिखते हैं अपना सिद्धांत को स्थापना करने के लिए हाँ हाँ कोटेशन रहता है कोटेशन के साथ जैसे भगवान भी इधर कर रहे हैं ठीक है। तो भागवतम जो है सर्व वेदांत सारमिति श्रीमद् भागवतम इष्यते सारे वेदांत का सार श्रीमद् भागवतम। तो गौड़ी वैष्णव के अनुसार सारा वेदांत का जो वेदांत सूत्र का स्वाभाविक भाष्य श्रीमद् भागवतम। तो बहुत इसके ऊपर चर्चा करते हैं बहुत लंबा हो जाएगा इतनी सम आइडिया तो आ गया सम आइडिया इससे ठीक है। तो ब्रह्म सूत्र प्रदेश सेवा हेतु विनिश्चित ही हे अर्जुन वेदांत सूत्र में इस बात को जो कहा गया है और अनेकों लोगों ने ऋषिबिर बहुधा गीतम इसी वेदांत सूत्र के ऊपर आधारित होके अनेकों ऋषियों ने इसी तत्व ज्ञान का गान किया है, वर्णन किया है। और कैसे वर्णन किया है? हेतु मध्य हेतु, हेतु मतलब क्या है? कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी के द्वारा। कारण क्या है, परिणाम क्या है, वो परिणाम किसी और चीज का कारण कैसे बना और उसका परिणाम क्या है, उसको कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी बोला जाता है, हेतुवाद। इसका तात्पर्य पड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट तात्पर्य।
इस ज्ञान की व्याख्या करने में भगवान कृष्ण सर्वोच्च प्रमाण है, फिर भी विद्वान तथा प्रमाणिक लोग सदैव पूर्ववर्ती आचार्यों का साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। कृष्ण आत्मा तथा परमात्मा की द्वैतता तथा अद्वैतता संबंधी इस अति विवादपूर्ण विषय की व्याख्या वेदांत नामक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कर रहे हैं, इसे प्रमाण माना जाता है। सर्वप्रथम वे कहते हैं कि विभिन्न ऋषियों के मतानुसार है, जहां तक ऋषियों का संबंध है, श्री कृष्ण के अतिरिक्त व्यासदेव जो वेदांत सूत्र के रचयिता हैं, महान ऋषि हैं और वेदांत सूत्र में द्वैत के भलीभांति व्याख्या हुई है। व्यासदेव के पिता पराशर भी महर्षि हैं और उन्होंने धर्म संबंधी अपने ग्रंथों में लिखा है, अहम त्वम च तथान्य, अहम त्वम च तथान्य, तुम मैं तथा अन्य सारे जीव अर्थात हम सभी दिव्य हैं।
ये देखिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि स्वयं व्यासदेव भी, भगवान तो स्वयं है लेकिन ऋषियों के उदाहरण देते हैं। सबसे पहला व्यासदेव स्वयं है, वो वेदांत सूत्र में इस बात को स्पष्ट रूप में लेखन किए कि परमात्मा और जीव में अंतर है। और पराशर मुनि का भी एक उल्लेखन करते हैं जिसका छोटा सा एक श्लोक कोट करते हैं उनके, अहम त्वाम च ततान्ये, अहम मतलब मैं, त्वाम मतलब तुम, तथा अन्य मतलब बाकी सब जितने भी जीव हैं। थोड़ा ही दिया मतलब तीनों को अलग अलग प्रकार उल्लेखन किया गया, परमात्मा एक इंडिविजुअल आत्मा और अन्य आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए।
भले ही हमारे शरीर भौतिक हों, हम अपने अपने कर्मों के कारण प्रकृति के तीनों गुणों के विषीभूत होकर पतित हो गए हैं। फलतः कुछ लोग उच्चतर धरातल पर हैं, कुछ निम्नतर धरातल पर हैं। ये उच्चतर तथा निम्नतर धरातल अज्ञान के कारण है और अनंत जीवों के रूप में प्रकट हो रहे हैं, किंतु परमात्मा जो अच्युत हैं तीनों गुणों से अदूषित हैं और दिव्य है। इसी प्रकार मूल वेदों में विशेषतया कठोपनिषद में आत्मा परमात्मा तथा शरीर का अंतर बताया गया है। इसके अतिरिक्त अनेक महर्षियों ने इसकी व्याख्या की है जिनमें पराशर प्रमुख माने जाते हैं। छंदो छंदोवी शब्द विभिन्न वैदिक ग्रंथों का सूचक है। उदाहरणार्थ तैत्तिरीय उपनिषद जो यजुर्वेद की एक शाखा है, प्रकृति जीव तथा भगवान के विषय में वर्णन करती है।
जैसा मैं पहले कहा जा चुका है कि क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ है कर्म क्षेत्र, क्षेत्र की दो कोटियां हैं जीवात्मा तथा परम पुरुष। जैसा कि तैत्तरीय उपनिषद में 2:9 कहा गया है, ब्रह्म पुंज प्रतिष्ठा, भगवान की शक्ति का प्राकट्य अन्नमय रूप में होता है, अन्नमय जिसका अर्थ है अस्तित्व के लिए भोजन, अन्न पर निर्भरता। यह ब्रह्म की भौतिकतावादी अनुभूति है। अंत में परम सत्य की अनुभूति करने के पश्चात फिर प्राणमय रूप में मनुष्य सजीव लक्षणों या जीवन रूपों में परम सत्य की अनुभूति करता है। ज्ञानमय रूप में यह अनुभूति सजीव लक्षणों से आगे बढ़कर चिंतन, अनुभव तथा आकांक्षा तक पहुंचती है। तब ब्रह्म की उच्चतर अनुभूति होती है जिसे विज्ञानमय रूप कहते हैं, जिसमें जीव के मन अवस्था जीवन के लक्षणों को जीव से भिन्न समझा जाता है। इसके पश्चात परम अवस्था आती है जो आनंद में है, अर्थात सर्व आनंद में प्रगति की अनुभूति है। इस प्रकार से ब्रह्म अनुभूति की पांच अवस्थाएं हैं जिन्हें ब्रह्म पुंज कहा जाता है। ब्रह्म पुच्छम कहा जाता है। इनमें से प्रथम तीन अन्नमय, प्राणमय तथा ज्ञानमय अवस्थाएं जीवों के कार्यकलापों के क्षेत्रों से संबंधित होती हैं। परमेश्वर इन कार्यकलापों के क्षेत्रों से परे है और आनंदमय है। वेदांत सूत्र भी परमेश्वर को आनंदमय अभ्यासा कहकर पुकारता है। भगवान स्वभाव से आनंदमय है। अपने दिव्य आनंद को भोगने के लिए वे विज्ञानमय, प्राणमय, ज्ञानमय तथा अन्नमय रूपों में विस्तार करते हैं। कार्यकलापों के क्षेत्र में जीव भोक्ता क्षेत्र माना जाता है, किंतु आनंदमय उसे भिन्न होता है। आनंद में उससे भिन्न होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि जीव आनंदमय का अनुगमन करके करने में सुख मानता है तो वो पूर्ण बन जाता है। क्षेत्र के ज्ञाता क्षेत्र रूप में परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर उसके अधीन ज्ञाता के रूप में जीव की तथा कार्यकलापों के क्षेत्र की प्रकृति का यह वास्तविक ज्ञान है। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र में इस सत्य की गवेषणा करनी होगी। यहां इसका उल्लेख हुआ है कि ब्रह्म सूत्र के नीति वचन कार्य कारण के अनुसार सुंदर रूप में व्यवस्थित हैं। इनमें से कुछ सूत्र इस प्रकार हैं, न वेद श्रुते 2-3-2, नात्मा सूत्र 2-3-18 तथा परात्तु तच्छुते 2-3-40। प्रथम सूत्र कार्यकलापों के क्षेत्र को सूचित करता है, दूसरा जीव को और तीसरा परमेश्वर को जो विभिन्न जीवों के आश्रय तत्व है।
हुई तो चर्चा किया ना, प्रभु जी ने बताया, अभी तो कमेंट्री पढ़ के सुनाया ना कि
सारे अध्यायों से आना हो गया।
इसलिए वो कनेक्शन मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उन्होंने श्रीधर स्वामी को कमेंट्री से मैंने सुनाया कि भगवान ने क्या कहा कि तेषा समुद्रतम संसार सागर। बारहवा अध्याय में उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, मैं ऐसे जो भक्त मेरा नानी भक्ति करते हैं उनको मैं स्वयं अपने हाथ से उनको उद्धार कर लेता हूं। तो अर्जुन ने पूछा कि क्या तत्वज्ञान के बिना भी कर लेते आप? ठीक है, आप करेंगे अलग बात है, लेकिन कम से कम सुनाइए तत्वज्ञान फिर वापस। एक कारण। दूसरा है कि उन्होंने पुरुष और प्रकृति और जीव के बारे में उन्होंने सातवें अध्याय में संक्षिप्त में दिया था, अभी विस्तार से कर रहे हैं, वो भी टेक्निकल भाषा में कर रहे हैं। बस अंतर कि पहले जो दूसरे अध्याय में जो पढ़े हैं वही चीज है, लेकिन भाषा थोड़ा टेक्निकल है, अंतर यही है। देयर इज ओनली डिफरेंस।
यहां पे हाँ
नहीं, ये जो है ना, ये 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 सेंटेंस अलग है।
किसके लिए है? अहम त्वाम तथा अन्य,
अहम त्वाम तथा अन्य, वी यू
भगवान के तरफ से बोल रहे हैं। इसमें भगवान क्या है? अहम मैंने भगवान अपने आप को अहम कह के त्वाम मैंने जीवात्मा और अन्य
भगवान के श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं। नाउ वी आर फॉलन टू वेज ऑफ थ्री मोड्स नेचर अकॉर्डिंग टू आवर डिफरेंट कर्म। नाउ वी आर फॉलन, यू आई एंड वेरियस अदर लिविंग एंटिटीज। नहीं नहीं हो, इतना कंफ्यूज मत होने की जरूरत है इसमें। तो वी नॉट गेट इट सो मच डिटेल। तो थोड़ा सा ये ब्रह्मपुच्छम के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये आता है तैत्रेय उपनिषद। तैत्रेय उपनिषद में एक कन्वर्जेशन है जिसके अंदर ये पांच प्रकार का जो माया, एक है अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय, आनंदमय, चेतना के पांच स्तर है, कॉन्शियसनेस, फाइव लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। पहला स्तर है जिसमें जी हमेशा अन्न, मैं कब खाऊंगा, क्या खाऊंगा, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता, मैं खाऊंगा नहीं तो जी नहीं पाऊंगा, खाने के लिए जीता हूं, जीने के लिए खाता हूं, उनका फिलॉसफी है। ये इसको अन्नमय चेतना बोला जाता है,
अन्न के बारे में सोचता
है। हाँ, उनका चेतना ही अन्न है, जैसे मछली देखा, मछली मछली का पूरा चेतना मुंह में रहता है, ऐसे ऐसे करता रहता है, क्या खाऊं क्या खाऊं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा विकसित होता है जिसका चेतना, तब वो सिक्योरिटी के बारे में सोचता है,
सुरक्षा,
सुरक्षा। इसको प्राणमय कहा जाता है। ठीक है, अन्न है लेकिन कल क्या होगा, तो मुझे अभी युवावस्था में हो, अन्न तो मिल रहा है, कमा रहा हूं, सब कुछ है, लेकिन जब वृद्धावस्था में मुझे कौन देखभाल करेगा, इसलिए मुझे पुत्र चाहिए, परिवार चाहिए, ये सब सिक्योरिटी रखते हैं, इसको प्राणमय क्षेत्र कहा जाता है। बाद में नेक्स्ट ज्ञानमय क्षेत्र, उसमें वो विचार करता है कि मेरे पास अन्न है, सिक्योरिटी भी है, लेकिन कुछ दार्शनिक चिंतन के कार्य करना चाहिए, जैसे सोशल वर्क है और दूसरों के बारे में विचार करना, भलाई करने के जाना, अच्छा करना। अभी थोड़ा सा वो शरीर और शरीर की सिक्योरिटी के स्तर से थोड़ा सा ऊपर पहुंच गया है। फिलॉसफर्स बनना, ये तीनों अवस्था जो है, तीन स्तर की जो चेतना है वो भौतिक, भौतिक मेटीरियल, मेटीरियल कॉन्शियसनेस। इसलिए द्रौपदी लिखते हैं कि आउट ऑफ दीज द फर्स्ट थ्री, अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय, इन्वॉल्व द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज ऑफ द लिविंग एंटिटीज। अन्नमय, ज्ञानमय और प्राणमय तीन जो है फील्ड ऑफ एक्टिविटीज यानी क्षेत्र के अंतर्गत है, विदिन द क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र
क्षेत्र के अंतर्गत,
यानी कर्म क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, जब चेतना का और विकास होता है, जब वो निश्चित रूप में जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा का स्वरूप क्या है, भगवान का सेवा करना है, ये विज्ञानमय चेतना है। उसके बाद आखिरी में आनंदमय चेतना, भगवान की प्रेममय भक्ति का साक्षात्कार होने पर होता है। भगवान की प्रेममय सेवा में रत रहता है तब उनका आनंदमय कहा जाता है।
विज्ञान में चेतना नहीं, सेवा तो शुरू हो जाती है
ना। हाँ, इसमें विज्ञानमय में पूर्ण तरीके से प्रेम का विकास और साक्षात्कार हुआ है। अभी भी वो दिव्य स्तर है लेकिन ये ऐतिहासिक प्रश्न में एक कन्वर्सेशन है। भृगो वै वरुणी, एक भृगु के पास अपना पुत्र आके पूछता है, हे पिताजी मैं जानना चाहता हूं कि जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा वो सब कुछ मेंटेनेंस होता है, स्थिति होता है, और जिनमें सब प्रवेश है। हेतो या इमानि भूतानि जायन्ति येन जातानि जीवन्ति प्रलीयते अभिशमिशन्ति येन, ये मतलब जिनने, कौन है वो जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा सब कुछ पालन होता है, और अंततः वो उन्हीं में प्रलीयन्ति हो जाता है। तब पिताजी कहते हैं बेटा तुम जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो। तो ये वैदिक शिक्षा है, वैदिक शिक्षा इस प्रकार दिया जाता है, तपस्या करो, गुरु का सेवा करो और प्रकृति को परिशीलन करो, ऑब्जर्व द नेचर, ऑब्जर्वेशन के द्वारा व्यक्ति सीखते हैं। तो हो गए आके उन्होंने कहा हां मैं जान लिया, मैं जान लिया, अन्नादेव भूतानि जायन्ति अन्नादेव भूतानि जीवन्ति यत् प्रलीयन्ते अन्नादेव हि अभिशम विशन्ति। अन्न से सब प्रकट होता है, अन्न से ज्यादा जीव अपना जीवन यापन करते हैं, अन्न से फिर वापस अन्न ही बन जाता है। तो पिताजी ने पूछा कि तूने ये देखा, तो बताओ क्यों तूने देखा, कि मैंने देखा सारे जितने भी जानवर है जंगल में अन्न खा रहे, अन्न खाने की वजह से वो क्या हो रहा है, वो बच्चे को पैदा कर रहे, वो बच्चा भी अन्न खाता है और जीता है, और यही व्यक्ति यही जो है वो बच्चे का मृत्यु के बाद वो अनेकों कीड़े के लिए वो शरीर और कोई जानवर के लिए वो आहार बन जाता है, कोई अन्न बन जाता है। ये अन्न से प्रकट हुआ, अन्न से अपना जीवन यापन किया और अंत में क्या हुआ, अनुभव है सब कुछ अन्न ही ब्रह्म है, ऐसा विचार किया। पिताजी ने कहा कि नहीं भाई मैं स्वीकार नहीं करूंगा, जाओ आप फिर वापस जाओ। तो ये दास वापस जंगल में गया, जंगल में जाके फिर देखा नहीं अन्न से परे कुछ है क्या, तो विचार करने लगा ये जो है इसके पास आहार मिलने पर भी ऐसा क्यों, ये जानवर है मनुष्य है एक परिवार को साथ में लेता है, एक परिवार में प्रवेश कर रहा है। गांव में भी देखता हूं कि पति पत्नी का विवाह हो रहा है, बच्चे हो रहे हैं, एक परिवार के रूप में निवास कर रहे हैं और एक जानवर को अगर कुछ हो जाता है तो जानवर समूह आकर उनको रक्षा के लिए आ जाते हैं, दूसरे जानवर को भगा देते हैं, एक रक्षा की जो प्रोटेक्शन कहां से आ रहा है, तब प्राण। और साथ साथ उन्होंने भी देखा कि अन्न भी खाता है, मरता क्यों है जानवर, अभी खाने के बाद भी क्यों मरा, यानी अन्न से परे ऐसा कुछ चीज है जिसके द्वारा जीवन का मेंटेनेंस होता है। तब उन्होंने देखा कि प्राण, तब उन्हें आके कहा प्राण आदि वही भूतानि जायन्ते, प्राणादि वही भूतानि जीवन्ति प्रलियन्ते विषम विशन्ति, ये अन्न से पढ़कर क्या है प्राण। तो बाद में उन्होंने देखा कि अन्नमय प्राणमय और ज्ञानमय, मनुष्यों के पास अन्न और प्राण होने पर भी उनको ये ज्ञान की आवश्यकता पड़ रहा है, कुछ एक दूसरे से बात करना, चर्चा करना, सुंदर चीज को देखना, सुंदर चीज बनाना। वैसे बनाने के लिए तो घर बना के रह सकते हैं, लेकिन वो घर के अंदर इंटीरियर नाना प्रकार के बना के रहते हैं क्यों, वैसे दो कमरा चाहिए किचन चाहिए लेकिन उसके अंदर है 5 लाख का घर लेकिन 10 लाख का इंटीरियर करते हैं क्यों, सजाना बगीचा बनाना यानी कुछ और चीजें की आवश्यकता है जिसका चेतना उनके उसके स्तर में है, वो क्या है, वो ज्ञानमय या मनोमय, कभी कभी मनोमय, इधर ज्ञानमय लिखा है वो, लेकिन वो जो मूल श्लोक में मनोमय लिखा है क्योंकि मन के स्तर पर मेंटल स्पेकुलेशन मेंटल प्लेटफॉर्म में। तब उन्होंने देखा माना मन से ही सब कुछ आता है, मन से ही सब कुछ, ये तीनों चीज होता है, सृष्टि सिद्धि प्रलय मन मन के स्तर में है, उसके बाद विज्ञान, उसके बाद आनंद, तो ये प्रोग्रेशन है, ये उपनिषद का चर्चा है, दिस स्मॉल डिस्कशन उसमें आता है। तो अंततः जब आनंद आनंद से ही हमारा जीवन उत्पन्न होता है, उसी की वजह से हमारा जीवन मेंटेन होता है और उन्हीं की वजह से प्रलियंते प्रवेश करते, जब ये बात आया तब माना गया था, इट इज जस्ट रेफरेंस मात्र है, ठीक है। अन्नमय ज्ञानमय इसको ब्रह्म पुच्छम कहा गया है, हो गया नेक्स्ट। साक्षात्कार मतलब उसका प्रोग्रेशन है, यानी ये सब होने के बाद भी जीव सेटिस्फाइड नहीं है, इतना बड़ा राजा है उसके पास अन्नमय प्राणमय और ज्ञान मनोमय सब कुछ है, लेकिन राजा फ्रस्ट्रेटेड है। वो जंगल में मैं गया था, मैं देखा एक राजा इतना महंगा मुकुट पहन के सारा सेना के पास आके एक भिखारी जैसे दिखाई पड़ रहा, जिसके पास कोपिन भी नहीं है बराबर का, उसके पास जाकर उनके चरण में प्रणाम कर रहा है, क्यों, क्या जरूरत है उनको, यानी राजा के पास ऐसा कुछ चीज नहीं है जो वो साधु के पास है। मुझे पता लगा है साधु के पास क्या है, विज्ञान है, अंततः साधु क्या कर रहा है, वो भी भजन कर रहा है, वो कहां किसका भजन कर रहा है, आनंदमयों के साथ जो भगवान है आनंदमय है उनका भजन कर रहा है। जब तक उनको प्राप्त नहीं करेंगे तब तक जीव की चेतना की पूर्णता नहीं होगी। द परफेक्शन ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट अचीव्ड। ठीक, आपने मैनेजमेंट स्टडीज किया कभी किसी ने? उसके अंदर है ना मैस्लोस, मैस्लोस क्या किसका, फाइव लेवल्स ऑफ हायरार्की, हायरार्की ऑफ नीड्स। पहला है रोटी कपड़ा मकान, बाद में उसको चाहिए सुरक्षा, बाद में परिवार, बाद में कुछ ज्ञान, अंततः उसको क्या चाहिए, उसको बोलते सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो एक ही चीज है, वो स्पेक्युलेशन के द्वारा उपनिषदों से इस चीज को लिए, लेकिन अंततः ये पांच चीज है या फाइव लेवल्स, हायरार्की ऑफ नीड्स। किसी व्यक्ति का ये पांच चीजें आवश्यकता रहती है, रोटी कपड़ा मकान, उसके बाद सुरक्षा, उसके बाद पारिवारिक इमोशनल सेटिस्फैक्शन, उसके बाद इंटेलिजेंस सेटिस्फैक्शन, अल्टीमेटली सेटिस्फैक्शन उसको होती है। हाँ जनरली मैक्सिमम तीसरे तक जाके अटक जाते, इसलिए सब लोग बहुत ही जगत में रहते, ऊपर नहीं जा पाते। ठीक है, नेक्स्ट 6:10-7 समाप्त कर देंगे आज। 6:10-7 श्लोक, महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि चैकं च पंचचेन्द्रियगोचर इच्छा द्वेष सुखं दुःखं संगादचेतनादृति एतच्चित्रं समासेन सविकारं उदाहृतम्। अभी क्षेत्रम, किन चीजों से बनाए क्षेत्र?
कर्म
क्षेत्र किन चीजों से बना है, वही चीज लिखा है। आपका जो छह प्रश्न थे ना पहले वाले श्लोक में, वो छह प्रश्नों का एक जवाब देते हैं। कौन सा था प्रश्न? क्षेत्र क्या है और वो किन चीजों से बना हुआ है। किन चीजों से बना हुआ है पढ़िए, महाभूता, महाभूतानी। क्या है महाभूतानि? पंचमहाभूत क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। बाद में किन चीज से बना है? अहंकार, बुद्धि। इसके अंदर जो ऐसा लाइन में पड़ेगा, महाभूतानि मतलब पंचमहाभूत। बाद में छठा क्या है इसके अंदर श्लोक में? अहंकार। सातवां बुद्धि। बाद में अव्यक्त, अव्यक्त क्या है? हाँ, सुबह इंग्लिश भागवतम क्लास में यही चर्चा कर रहे थे, व्हाट इज प्रधान। आज इंग्लिश क्लास में थे। हाँ, तीनों गुणों की, उसका और एक नाम क्या है? और एक नाम क्या है प्रधान का? अव्यक्त और एक नाम, दो नाम और बताता हूं। वेरी गुड, महद ब्रह्म, महद ब्रह्म, और एक नाम क्या है? सगुण ब्रह्म। ठीक है, ये द नेम्स।
इसलिए जो क्रिएशन का आप पूरा चार बना अच्छे से
देखिए, अभी हो गया, कल से और चार दिन बाकी है, उसमें और दो चित्र कदम। वो बहुत सरल तरीके से कपिल मुनि के संवाद में है। बहुत सारे जो कन्फ्यूजन है सुबह क्लास में क्लैरिफाई किया, मोस्ट ऑफ द कन्फ्यूजन। आप थे सुबह क्लास में? कौन कौन थे इंग्लिश क्लास में? आप थे नहीं, जस्ट सी। अव्यक्त। उसके बाद ए बच्चा इंद्रियाणि दशैकम्, मैं श्लोक भी कोट किया था उसमें। हाँ वही देखिए वो दूसरा पैराग्राफ में लिखते हैं प्रधान, दूसरा पैराग्राफ आखिरी लाइन देखिए। हाँ ठीक है, तो अव्यक्तानि मतलब क्या है प्रधान। महाभूतानि अहंकारो, पांच में से छह अहंकार हो गया, छह हो गया, बुद्धि कितना हुआ सात हुआ, और अव्यक्त क्या हुआ आठ हुआ। ठीक है ये बच्चा, इंद्रियाणि दशैकम् च, कितने इंद्रिया हैं पांच, कर्म इंद्रिया पांच और दस, दशैकम् लिखा है, वेरी मन मन, तो ग्यारह टोटल कितना हुआ उन्नीस। इंद्रियाणि दशैकम् च पंचचेन्द्रिय गोचरा, इंद्रियों के विषय वस्तु क्या है वो, लाइन में बताइए। रूप पहला, सबसे पहला नीचे से ऊपर से बता सकते, भूमि आपोर लो वायु कम, उसके लाइन में बताइए। भूमि का गंध, बाद में जल का स्वाद, और रूप हो गया, हाँ हाँ जल का रस है, स्वाद है या रस है,
रूप स्पर्श
रस
रस
रस, स्वाद है, स्वाद बोले सरल भाषा में स्वाद है। अभी क्या बोलेंगे, इंग्लिश का टेस्ट है ना उसका, तो उसका अनुवाद करेंगे। अभी हमारा ऐसी स्थिति है, पहले संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी, ऐसा हो जाता है।
वैसे क्या इसका रस है,
रस
स्वाद किया रस है,
हाँ स्वाद कुछ अलग हो गया ना। रस रस रसो अहम आपसे कौनते हैं, रस का रस ही है ये, स्वाद जो है वो हाई क्लास हिंदी नहीं है। जैसे टेस्टी है, टेस्टी है बोले, क्या बोले अगर
रसीला है,
रसीला है उसका एक्चुअली परफेक्ट वर्ड है रसीला है, लेकिन हम लोग स्वादिष्ट बोलते हैं ना, स्वादिष्ट। आज भी मूल संस्कृत है लेकिन फिर वो यूज नहीं किया जाता है। तो पांच हुआ, उन्नीस प्लस पांच कितना हुआ चौबीस, ठीक है। आज सुबह बौद्धम क्लास में वही गिन रहे थे, प्रधान वो चीज है जिसके अंदर चौबीस तत्व तो उनके अंदर है, लेकिन इसके अंदर उचित नहीं आया। मैंने कहा था स्पेसिफिकली कि भागवतम में आपको ये जो मन बुद्धि अहंकार, हमको तीन सूक्ष्म तत्व आपको भगवद गीता में है, लेकिन भागवतम के स्तर में
चित्त आपने बताया था,
चौथा क्या है चित्त
है, भागवतम में
है। हाँ आज वो इंग्लिश में वही चल रहा है, मुझे मालूम ही नहीं था कि वही चल रहा है इंग्लिश में, लेकिन वही श्लोक आया जिस श्लोक के ऊपर मेरा हिंदी का क्लास एंड हुआ था, वही श्लोक का था आज इंग्लिश में। फोर्थ अभी इलेवेंथ था ना, फोर्टींथ या फिफ्टींथ है, फिफ्टींथ है,
इलेवेंथ कैसे होगा?
326 हाँ इलेवेंथ आज हुआ, 12, 13, 14 या 15 में है जिस अभी कल का श्लोक यही है, क्योंकि बाकी बीच में जालों का तात्पर्य नहीं है।
कितना अभी 25 तक हो गए?
नहीं नहीं 24 हुआ। हाँ वो चित्त को जोड़ेंगे प्रधान के अंतर्गत, ये 24 है। चित्त को देखिए भगवद गीता में आठ कहेंगे 25 हो सकता है, ये कभी कभी गणना में अलग अलग है। ज्वाइंट हार टू
अब भगवान से बात करते तो 28 तत्व का वर्णन करते हैं, वो क्या पकड़ते हैं फिर?
परमात्मा, आत्मा, काल,
ये पकड़ते सब।
हाँ ये ऐसा काल को जोड़ के 25 ऐसा वर्णन हुआ है, तो इसलिए कभी भी कभी 25 है, कभी 24 है, कोई 26 बोलता है, कोई 16 बोलता है, तो ये सब चीजें कंफ्यूज नहीं होना है, उतना ही लेकिन उसका क्लासिफिकेशन। आज क्लास में इस बात को कहा था मैंने, आप कंफ्यूज मत हो जाइए, क्लासिफिकेशन में अलग अलग हो सकता है, बहुत जगह अलग अलग जगह अलग प्रकार का। ठीक है, अभी जब ये 24 तत्वों के बीच में इंटरैक्शन होता है, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, इच्छा द्वेष सुखम दुखम, संगादत संगातः चेतना धृति, चेतना थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ये जो है एग्रीगेट, ये कोई तत्व नहीं है, अलग सा चीज नहीं है संघात, ये 24 चीजों का समूह जो है उसको क्षेत्र बोला गया है। हाँ संघात,
क्षेत्र का क्या
क्षेत्र, क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र, और ये क्षेत्र के अंतर्गत ये 24 तत्व है, इनके बीच में जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन को हिंदी में क्या बोलेंगे? आंतरिक क्रिया, उसकी वजह से क्या होता है, कभी इच्छा कभी द्वेष, कभी सुख कभी दुख। ये उनका विकार, वो तो प्रश्न में 6 प्रश्नों में एक प्रश्न का क्या विकार, ये विकार, हाँ वही ना सब संग। हाँ और उसको अनुभव करने वाला क्या है, इन सुख और दुख को क्षेत्र, संघा क्षेत्र, तो ये कौन सा चेतना है, ये तीनों गुणों के द्वारा मिश्रित चेतना है, जिनको भागवत में चित्त कहा गया है।
आपने जो कलुषित चेतना कहा है,
हाँ ओके, कंटेमिनेट कॉन्शियसनेस। प्रभुपाद देखते हैं जो लोग ये तत्वों के बारे में जानना चाहते हैं वो सांख्य दर्शन को पढ़ना चाहिए। भगवद गीता में केवल संक्षिप्त में दिया है, ओनली गिवन इन।
विकार
इनके विकार इच्छा द्वेष सुखम दुखम चेतना से उत्पन्न नहीं होता। इन लोगों के इन चीजों के बीच में जो इंटरैक्शन है, इंटरैक्शन जो है वो विकार है।
विकार
वही इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये विकार परिवर्तन। इच्छा द्वेष सुखम दुखम
परिवर्तन क्या है?
हाँ, अल्टीमेटली वो परिवर्तन जब होता है, कभी मान लो कि एक बच्चा युवक बन गया तो उसको अच्छा लगा ना, वो युवक जो है बुढ़ा बन गया वो खराब लगा। अल्टीमेटली ये जो है इच्छा द्वेष सुखम दुखम, ये विकार, इसको विकार। ठीक है,
कहाँ से उत्पन्न एक प्रश्न है यहाँ पे, कहाँ से
ठीक है। ये क्रम जो है सबसे पहला प्रदान, प्रदान प्लस काल मात तत्व, प्रदान प्लस काल महत्तत्व। तो प्रदान के नीचे महत्तत्व है, महत्तत्व के नीचे अहंकार है, प्लस काल महत्तत्व। महत्तत्व प्लस जीव शक्ति, जीव समूह, महत्तत्व प्लस जीव समूह अहंकार। अगर जीव नहीं होगा तो कहां से अहंकार आएगा?
जीव समूह
अहंकार, अहंकार का तीन अहंकार है, तीन प्रकार है, सात्विक अहंकार, राजसिक और तमसिक। सात्विक अहंकार से मन और नियंत्रण करने वाला देवताओं को उत्पत्ति, राजसिक अहंकार से बुद्धि और इंद्रिया, दस इंद्रिया, तमसिक अहंकार से पंच महाभूत और तन्मात्राएं। तन्मात्रा मतलब वही शब्द स्पर्श वगैरह इत्यादि। अश्वे क्लास में कहा तन्मात्राओं को तन्मात्रा कहा जाता है, इंद्रिय विषय वस्तु कहा जाता है, देखिए इससे नाम अलग है। ये तन्मात्राओं को इंद्रिय विषय वस्तु बोला जाता है, तन्मात्रा बोला जाता है, और पंच महाभूतों के सूक्ष्म
सूक्ष्म
रूप,
तो वास्तव में एक ही इंद्रिय है, एक इंद्रिय का दो रूप है, सूक्ष्म और तन्मात्रा।
ठीक है,
हमें किस चीज के लिए,
क्या चीज,
दो तरह से तरीके से बना
ये पंच महाभूतों का सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप है। जैसे पृथ्वी का सूक्ष्म तत्व क्या है, ऐसा तो जिनको उसको तन्मात्राएं बोला जाता है, या इंद्रिय विषय वस्तु बोला जाता है, या इंद्रियों के विषय। ठीक है, अब ये सर्ग हो गया।
पहले सबसे पहले प्रदान है,
प्रदान
उसके बाद महत्व
तीन कैटेगरी में हो गया, सृष्टि हो गया, चौबीस प्रेस्ट और जो इन चीज अलग सृष्टि के अलग अलग स्तरों में संकर्ष प्रद्युम्न अनिरुद्ध वासुदेव ये अधिष्ठात देव है। अभी जो इंग्लिश क्लास चल रहा है उसमें सब आएगा, ये जो बताया है ना एकदम श्लोक बाय श्लोक स्टेप बाय स्टेप स्टेप बाय स्टेप कपिल मुनि का इसका है। जो विस्तृत रूप में पढ़ना चाहते हैं इस स्टेप के बारे में कपिल मुनि और देवयती संवाद है 26वां अध्याय तीसरे स्कंद का। विसर्ग तो अभी ब्रह्मा जी आएंगे, ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करने के बाद भी भगवान प्रकट होते हैं और बाकी सब 14 भुवन को ऊपर के लोग नीचे के लोग पुष्टि करेंगे, उसके बाद सब कुछ देवता भी है सब कुछ है लेकिन कार्य नहीं, और फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करेंगे, फिर ब्रह्मा जी प्रार्थना करने के बाद भगवान आएंगे आके फिर वापस काल शक्ति को प्रदान करेंगे और सब कुछ चलने लग जाता है। ये सर्ग तक सर्ग विस्तृत रूप में भागवत में दो जगह वर्णन है, अनेक जगह कुछ श्लोकों में है, एक है दूसरा अध्याय का 10वां स्कंद जो अभी चल रहा है, दूसरा स्कंद का 10वां अध्याय हिंदी में चल रहा है जिसके ऊपर सर्ग का आखिरी श्लोक मैंने लिया 31 को, अभी उसी को दूसरे तरीके से इंग्लिश में चल रहा है, दोनों जगह पता नहीं टॉपिक एक ही है ये कॉम्बिनेशन का भी रेयर कॉम्बिनेशन है।
भगवान की सबसे पहले
दृष्टि
पड़ी है वो
प्रकृति हम
लोग बोलते हैं, प्रदान 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 प्रदान
प्रदान
दृष्टि पड़ने से काल का प्रभाव होगा,
काल अलग से दृष्टि के अंदर दो चीजें हैं भगवान की दृष्टि में, एक है काल शक्ति दूसरा है समूह जीव शक्ति, ये दो कंपोनेंट्स हैं जिसका मिश्रित स्वरूप है शंभु। काल शक्ति जीव शक्ति का मिश्रित स्वरूप है, इसके आप शिवलिंग में देखो जब दो स्पर्म्स रहते हैं एक काल शक्ति एक जीव शक्ति जो वीर्य के डिजाइन रहता है शिवलिंग के शिवलिंग शिवलिंग देखा है, शिवलिंग नीचे वाला जो है योनि है शिवजी का लिंग है और उधर दो दे आर टू जो मेन जो शिवजी का उधर वो देर बी स्पंज है काल शक्ति जीव शक्ति हाँ दो न वो रेखा नहीं वो उसके अंदर जो शिवलिंग वो है ना वो बेस रहता है ना उसके ऊपर देर भी जो अच्छी तरह से जो जानता है शिव तत्व को जानता है शंभु तत्व को जानता है उसी प्रकार बनाएंगे वो जो है किस प्रकार भगवान सृष्टि करते हैं उसका एक मॉडल है शिवलिंग
इसमें एक काल शक्ति
मम यो निर्महत ब्रह्मा तस्मिन गर्भम ददाम्य हम भगवान कहते हैं मैं ये महत ब्रह्म में एक गर्भ प्रदान करता हूं लेकिन भगवान क्या सीधे तरीके से प्रकृति के साथ संपर्क बनाते हैं नहीं अपने शक्तियों के द्वारा करते हैं तो ये किसके द्वारा करते हैं तस्मिन गर्भम ददाम्य हम शंभु के द्वारा करते हैं इट इज थ्रू शंभु इस प्रकार शंभु का योगदान सृष्टि के समय में भी है इट इज देयर ऑन द टाइम ऑफ देश
भगवान अपने दृष्टि के माध्यम से प्रधान पद काल शक्ति और जीव शक्ति का प्रभाव डालते हैं तो जीव को गर्भित करते हैं दृष्टि के माध्यम से और काल
के बिना कोई संचलन नहीं होता है ये काल शक्ति ही वो तीनों गुणों को उत्तेजित करता है हिरण्य गर्भ उत्पन्न होता है धक 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 का आवाज आता है कहीं और वर्णन है उसके अंदर से बहुत प्रकाश उत्पन्न होता है एक जगह और एक जगह वर्णन है थर्ड कैंटर इसका वर्णन है कहीं और तो ये काल शक्ति की वजह से ही सब कुछ होता है देवांगों को कल उदाहरण दे रहे थे ना, इसका रसोई का अग्नि है और बीच में मसाला डाला जाता है सब कुछ, लेकिन अग्नि ऐसी चीज है जो पूरा पकवान जब तक नहीं बनता तब तक होना ही चाहिए। तो वैसे ही भगवान का जो काल शक्ति है, ये सृष्टि से लेके पूरा प्रलय होने तक वो काल शक्ति की वजह से सब कुछ हो रहा है, सबसे शक्तिशाली वो चीज है। शंभु दोनों काल शक्ति और जीव शक्ति का परिणित मूर्तिमान स्वरूप है, इसलिए शंभु जो है वो टाइम डिपार्टमेंट का इंचार्ज है, इज इंचार्ज ऑफ टाइम डिपार्टमेंट। उनके अंडर में यमराज जी कार्य करते हैं और उनके अंडर में सूर्य कार्य करते हैं, ये टाइम डिपार्टमेंट के देवता लोग हैं, लेकिन शंभु इज द टॉपमोस्ट पर्सन। ये काल जो है मेरी शक्ति है, इट इज अ टाइम एनर्जी ऑफ द लॉर्ड। तो हिंदी वाले क्लास में मैं एक बात बताया था कि आगे वाले श्लोक में आ गया था, सेकेंड कैंट तो टेन चैप्टर का लास्ट लास्ट श्लोक में, कि वेदों में कहा गया है कि भगवान सृष्टि करते हैं, भगवान पालन करते हैं, भगवान में सब कुछ होता है, लेकिन स्वयं भगवान आके नहीं करते। इसीलिए कहा गया है ताकि लोगों को ये विश्वास दिलाने के लिए कि प्रकृति के पीछे एक पुरुष है, ये महान पुरुष है बुद्धिमान, असल में भगवान नहीं करते। भगवान क्या है, न कार्य न तस्य कार्यम करणम सुविदते, कोई कार्य नहीं, लेकिन फिर भी केवल इसी के लिए वो श्लोक है भागवत है, सेकंड कैंटो का टेन चैप्टर का लास्ट भगवदगीता में है ना, भगवदगीता का श्लोक है 14 का 5:14 मम यो निर्महत् ब्रह्म तस्मिन् गर्भम ददाम्यहम् संभवः सर्वभूतानाम्। इसलिए प्रधान को महत् ब्रह्म भी कहा जाए, आज के श्लोक इंग्लिश वाला भागवत श्लोक।
कई लोगों को अभी जितना यहाँ क्लियर हो रहे हैं, ये हम लोग कई
आदमी तक सुने। आप बताइए कि ये कपिल मुनि का जो अध्याय जो चल रहा है उसको कितनी बार पढ़े हो आप?
ये तो समझ नहीं आ रहा है।
नहीं
नहीं वहां
है, वही लिखा हुआ है उसका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। वैसे ही थोड़ा सा क्या है वो ट्रांसलेशन में थोड़ा गंभीरता से पढ़ना होगा बस, ठीक है। बस आ ले लीजिए, 2:30 बजे मिलेंगे। हाँ, इमीडिएटली।